एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुतों के लिए जाना पहचाना भी है और उतना ही कह सकते हैं रहस्यमय भी।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहते हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें हम में से कई लोगों ने सुना है, आदम और हव्वा, नूह की नाव या फिर मूसा का समंदर को दो हिस्सों में बांटना।
हाँ, ये कहानियां तो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं एक तरह से।
वही तो, पर सवाल ये उठता है कि आज इस वैज्ञानिक युग में इन हजारों साल पुरानी कहानियों को हम समझे कैसे? क्या ये इतिहास है, साहित्य है या ईश्वर के सीधे शब्द?
और ये बहुत गहरे सवाल हैं, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये ग्रंथ तो पश्चिमी सभ्यता की कह सकते हैं बुनियाद में है। और इसी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करती हैं माइकल डी कूगन की किताब दी ओल्ड टेस्टमेंट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब एक गाइड की तरह है जो हमें इन प्राचीन ग्रंथों को एक आधुनिक और तार्किक नज़रिए से पढ़ना सिखाती है।
अच्छा, मतलब ये हमें बताती है कि कैसे हम इन कहानियों की परतों के नीचे छिपे उनके असली मतलब तक पहुंच सकते हैं।
एकदम।
और मुझे लगता है कि आज के दौर में ये समझना और भी जरूरी हो गया है। एक तरफ आस्था है
और दूसरे तरफ विज्ञान और इतिहास की नई नई खोजें।
बिल्कुल, ये किताब इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करती है और दिखाती है कि इन प्राचीन ग्रंथों का आज भी हमारे लिए क्या महत्व हो सकता है।
तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे गाइड यानी लेखक माइकल डी कूगन से। वो कोई आप समझिए आम लेखक नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सम्मानित बाइबल विद्वानों में से एक है।
हाँ, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल जैसी जगहों पर पढ़ाया है और अब स्टोन हिल कॉलेज में प्रोफेसर एमेरिटस हैं।
लेकिन उनकी डिग्रियों से ज्यादा दिलचस्प बात उनका नजरिया है। वो ना तो किसी कट्टर धार्मिक उपदेशक की तरह बात करती हैं
कि बस मान लो,
हाँ कि बस मान लो, और ना ही किसी ऐसे आलोचक की तरह जो हर चीज को खारिज कर दे। वो एक इतिहासकार की आंखों से इन ग्रंथों को देखती हैं। उनका सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच है, बल्कि ये है
कि जब ये लिखा गया था तब इसका मतलब क्या था।
बिल्कुल, लिखने वालों और सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब था। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बहुत जटिल एकेडमिक रिसर्च को आम पाठक के लिए कहानी की तरह दिलचस्प बना देती है।
और वो द न्यू ऑक्सफोर्ड एनोटेटेड बाइबल की संपादक भी हैं, है ना, जो कि बहुत ही भरोसेमंद मानी जाती है।
जी हाँ, वो अंग्रेजी दुनिया में छात्रों और विद्वानों के लिए सबसे भरोसेमंद स्टडी बाइबल मानी जाती है।
तो हम कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही सुरक्षित और जानकार गाइड के साथ हैं।
बिल्कुल। तो अब आते हैं किताब के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार पर। कूगन कहती हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम ओल्ड टेस्टमेंट को एक किताब मानते हैं।
मतलब वो एक किताब नहीं है तो क्या है?
वो एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरी लाइब्रेरी है।
लाइब्रेरी?
हाँ, एक संकलन जिसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर लगभग 1000 साल के लंबे दौर में लिखा है। सोचिए, 1000 साल।
1000 साल? ये तो सोचने में ही अजीब लगता है,
है ना। इसमें राजघरानों का इतिहास है, युद्धों का जिक्र है, शानदार कविताएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, कानून हैं और ज्ञान की गहरी बातें भी।
तो ये एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की डायरी जैसा हुआ।
क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने।
और शायद इसीलिए इसमें हमें कई बार एक ही कहानी के अलग अलग रूप मिलते हैं। मैंने सुना है कि दुनिया की शुरुआत की 2 अलग अलग कहानियां हैं इसमें।
एकदम सही। कूगन इसी बात पर जोर देती हैं। वो कहती हैं कि इन अंतर्विरोधों या दोहराव को गलती की तरह नहीं देखना चाहिए।
तो फिर कैसे देखें?
एक सुराख की तरह, जैसे उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब खुलते ही हमें सृष्टि की 2 अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक में ईश्वर 7 दिनों में सृष्टि रचते हैं।
हाँ।
और दूसरे में वो पहले इंसान आदम को मिट्टी से बनाते हैं। यह अंतर्विरोध हमें बताता है कि इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए अलग अलग किताबों या स्रोतों को साथ में जोड़ा गया है।
ये बात तो बहुत दिलचस्प है। चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ओल्ड टेस्टामेंट और हिब्रू बाइबल में क्या फर्क है।
कूगन यहीं से शुरुआत करती हैं और ये बहुत जरूरी नुक्ता है। देखिए, जिसे ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, यहूदी उसे हिब्रू बाइबल या तनख कहते हैं। ओल्ड यानी पुराना शब्द ही ये बताता है कि एक न्यू यानी नया टेस्टामेंट भी है,
जिसे ईसाई मानते हैं पर यहूदी नहीं।
सही। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे पूरा इतिहास और धर्मशास्त्र छिपा है।
और फिर किताबों की संख्या का भी मामला है जिसे कैनन कहते हैं। मुझे तो लगता था कि बाइबल तो एक ही होती होगी।
यही तो सबसे दिलचस्प बात है। कैनन का मतलब है किताबों की आधिकारिक सूची। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में किताबों की संख्या अलग अलग है।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे ईश्वर का शब्द माना जाता है, उसे आकार देने में इंसानों की राजनीति, उनकी बहसों और उनके उनके फैसलों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है।
बिल्कुल, ये कोई आसमान से उतरी एक जिल्द वाली किताब नहीं है, ये एक जीवंत परंपरा है जो समय के साथ विकसित हुई। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं जो बाइबल के आसपास की दुनिया के बारे में है। कोगन कहती हैं कि बाइबल को समझने के लिए प्राचीन निकट पूर्व के नक्शे को समझना जरूरी है। इसराइल उस दौर की दो महाशक्तियों, मिस्र और मेसोपोटामिया,
जिसमें असीरिया और बेबीलोन जैसे साम्राज्य थे, पिताओं का इसराइल की सोच पर, उनकी कहानियों पर गहरा असर पड़ा होगा।
बहुत गहरा। कोगन एक कमाल का उदाहरण देती हैं। बाइबल में नूह और भयानक बाढ़ की कहानी है,
हाँ,
है ना?
नॉइस फ्लड।
ये कहानी मेसोपोटामिया के एक बहुत पुराने महाकाव्य गिलगमेश के महाकाव्य से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और गिलगमेश की कहानी बाइबल से सदियों पहले लिखी जा चुकी थी।
तो क्या क्या इसका मतलब है कि बाइबल के लेखकों ने नकल की?
कोगन कहती हैं इसे नकल या चोरी की तरह देखना सही नहीं होगा। ये उस दौर का एक साझा सांस्कृतिक तालाब था जिससे सब विचार और कहानियां ले रहे थे।
अच्छा।
बाइबल के लेखक उन प्रचलित कहानियों को लेकर उन्हें अपने ईश्वर याहवे के नजरिए से एक नया धार्मिक और नैतिक मतलब दे रहे थे।
यहीं पर आकर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अगर ये कहानियां एक साझा संस्कृति का हिस्सा थीं, तो सवाल उठता है कि बाइबल की पहली 5 किताबें जिन्हें तोरा कहते हैं, उन्हें लिखा किसने? परंपरा तो मानती है कि इन्हें मूसा ने लिखा था।
यहीं पर कोगन आधुनिक बाइबल स्कॉलरशिप के सबसे बड़े सिद्धांतों में से एक, डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस का परिचय देती हैं।
डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस?
हाँ, ये किसी जासूसी कहानी की तरह है। विद्वानों ने भाषा, शैली और ईश्वर के नाम के इस्तेमाल के आधार पर यह पता लगाया कि तोरा को किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कम से कम 4 अलग अलग स्रोतों या लेखकों के समूहों ने मिलकर लिखा है।
4 अलग अलग स्रोत? ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब बाइबल की पहली और सबसे पवित्र मानी जाने वाली किताबों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि 4 अलग अलग आवाजों को एक साथ गूंज कर बनाया गया है।
बिल्कुल, इन्हें जे, ई, डी और पी का नाम दिया गया है। हर स्रोत की अपनी खासियत है। जैसे जे स्रोत ईश्वर को यावे कहकर बुलाता है और उन्हें बहुत मानवीय रूप में दिखाता है, जो बगीचे में टहलते हैं, इंसानों से बात करते हैं।
अच्छा।
वहीं पी यानी प्रीस्टली या याजकीय स्रोत ईश्वर को एक महान ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में दिखाता है, जो सिर्फ अपने शब्द से सृष्टि की रचना करता है। ये अलग अलग दृष्टिकोण एक ही कपड़े में बुने हुए अलग अलग धागों की तरह हैं।
ये तो कमाल है। मतलब बाइबल पढ़ते हुए हम एक आवाज नहीं बल्कि कई आवाजों का एक कोरस सुन रहे होते हैं। तो इस लाइब्रेरी के मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं?
तोरा, नबी और लेख।
हाँ, तोरा में तो इसराइल की बुनियाद की कहानियां हैं, अब्राहम से लेकर मूसा तक। फिर आते हैं नबी यानी प्रॉफिट्स। और कूगन फोर देकर कहती हैं कि ये भविष्य बताने वाले ज्योतिषी नहीं थे।
नहीं थे तो कौन थे?
ये अपने समय के समाज सुधारक और मुखर आलोचक थे।
समाज सुधारक मतलब आज के जमाने के विसल ब्लोअर या एक्टिविस्ट की तरह। बिल्कुल, यशाया और आमोस जैसे नबी राजाओं और अमीरों को उनके भ्रष्टाचार और अन्याय के लिए सीधे सीधे चुनौती देते थे। वो कहते थे कि तुम मंदिरों में कितनी ही पूजा कर लो, अगर तुम गरीबों, विधवाओं और अनाथों का शोषण कर रहे हो तो तुम्हारा धर्म ईश्वर को स्वीकार नहीं। उनका मूल संदेश था न्याय ही सबसे बड़ी पूजा है।
और तीसरा हिस्सा है लेख यानी राइटिंग्स, जो सुनने में सबसे ज्यादा विविध लगता है।
और है भी, ये एक खजाने के संदूक जैसा है। इसमें भजन यानी साम्स की दिल को छू लेने वाली प्रार्थनाएं हैं, नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स की व्यवहारिक सलाह है,
और अय्यूब यानी जोब की किताब भी है, जो इस सवाल से जूझती है कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है।
सही कहा। और तो और श्रृंगार रस यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स जैसी कह सकते कामुक प्रेम कविताएं भी हैं।
प्रेम कविताएं बाइबल में?
ये विविधता ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये वाकई एक लाइब्रेरी है जिसमें इंसानी जिंदगी का हर रंग मौजूद है। बिल्कुल। और ये सारी कहानियां, कविताएं, कानून, ये सब हजारों साल पहले लिखे गए। ऐसे में सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि इनमें कितनी सच्चाई है?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या जमीन के नीचे दबे सबूत, मतलब पुरातत्व, इन बातों की पुष्टि करता है? क्या पुरातत्व बाइबल को सही साबित करता है?
खोगन का जवाब बहुत संतुलित है। वो कहती हैं कि पुरातत्व बाइबल को सही या गलत साबित करने का औजार नहीं है।
तो फिर क्या है?
वो हमें उस दौर का संदर्भ देता है। जैसे यहोशू की किताब में कनान पर एक तेज और खूनी सैन्य विजय की कहानी है।
और पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं?
सबूत इस कहानी से पूरी तरह मेल नहीं खाते। जिन शहरों को जलाकर राख करने का जिक्र है, वहां उस दौर में विनाश के कोई निशान नहीं मिलते।
अच्छा,
इससे विद्वान ये नतीजा निकालते हैं कि शायद इसराइल का उदय एक धीमी और ज्यादातर शांतिपूर्ण प्रक्रिया थी, न कि एक जबरदस्त हमला।
और राजा डेविड जैसे किरदारों के बारे में?
तो पुरातत्व हमें एक ज्यादा जटिल और सच्ची तस्वीर दिखाता है।
तो इस पूरी गहरी और दिलचस्प चर्चा से मुख्य विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं जिन्हें एक श्रोता अपने साथ ले जा सकता है?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है कि बाइबल एक किताब नहीं,
एक पुस्तकालय।
हाँ, एक पुस्तकालय है। इसे एक ही नियम से नहीं पढ़ा जा सकता, जैसे हम भारत में वेदों के मंत्रों, उपनिषदों के दर्शन और पुराणों की कहानियों को अलग अलग नजरिए से पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ भी हर ग्रंथ की शैली और उद्देश्य को समझना जरूरी है।
ये तुलना बहुत अच्छी है, इससे बात एकदम साफ हो जाती है। दूसरा मुख्य विषय क्या होगा?
दूसरा विषय ईश्वर की अवधारणा का विकास। ये बहुत ही आकर्षक है। कोगन दिखाती हैं कि बाइबल में ईश्वर की समझ भी समय के साथ विकसित हुई। शुरुआती किताबों में हेनोथिज्म का विचार दिखता है।
हेनोथिज्म? ये थोड़ा मुश्किल शब्द है, इसका क्या मतलब है?
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआती इसराइली मानते थे कि उनका ईश्वर याहवे सबसे शक्तिशाली है, पर वो दूसरे राष्ट्रों के देवताओं के अस्तित्व को नहीं नकारते थे।
अच्छा, मतलब हमारा भगवान तुम्हारे भगवान से ज्यादा मजबूत है।
बिल्कुल, लेकिन बाद में जब उन पर राष्ट्रीय संकट आए, जैसे बेबीलोन में उनका निर्वासन, तब उनका विचार मोनोथिज्म में बदला।
मोनोथिज्म यानी दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है।
हाँ, और बाकी सब झूठे देवता हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक विकास था।
और तीसरा मुख्य संदेश जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया, वो है सामाजिक न्याय पर जोर। नवियों की वो आवाज कि असली धर्म कर्मकांड में नहीं बल्कि न्याय और करुणा में है।
हाँ, ये सुनकर तो भारत के कबीर और अन्य संतों की याद आती है ना?
बिल्कुल, जो बाहरी आडंबरों पर चोट करते थे।
हाँ, और ये बाइबल की सबसे स्थायी नैतिक विरासतों में से एक है।
इस किताब में कई ऐसे विचार हैं जो दिमाग में गूंजते रहते हैं। कुछ ऐसे विचार साझा करते हैं जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करें।
जरूर। पहला और शायद सबसे अहम विचार, सवाल ये नहीं है कि बाइबल सच है या नहीं, बल्कि ये कि वो किस तरह का सच बताने की कोशिश कर रही है।
ये बहुत गहरी बात है। मतलब जब हम उत्पत्ति की कहानी पढ़ते हैं तो हमें उसे विज्ञान की किताब की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। वो हमें ये नहीं बता रही कि बिग बैंग कैसे हुआ।
नहीं,
बल्कि ये बता रही है कि इस ब्रह्मांड में इंसान होने का मतलब क्या है, अच्छाई बुराई क्या है। ये एक अलग तरह का सच है।
ठीक यही बात। दूसरा विचार है, पुरातत्व बाइबल के पीछे की दुनिया को रोशन करता है। ये हमें टाइम मशीन की तरह उस दौर में ले जाता है ताकि हम इन ग्रंथों को 21वीं सदी की आंखों से नहीं बल्कि उन लोगों की आंखों से देख सकें जिन्होंने इन्हें पहली बार सुना था।
और तीसरा विचार जो नबियों से जुड़ा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है, नबियों का ईश्वर विस्तृत अनुष्ठान नहीं चाहता, वो न्याय की मांग करता है।
काम यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी धर्म का दिल उसकी नैतिक शिक्षाओं में होता है, उसके बाहरी कर्मकांडों में नहीं। करुणा के बिना कर्मकांड खोखला है।
तो इन सब अकादमिक बातों का हमारी असल जिंदगी में क्या फायदा है? कोई इन्हें सुनकर सोचे कि ठीक है, ये सब जानना दिलचस्प है, पर इससे मेरे जीवन में क्या बदलेगा?
मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो ये सिखाता है वो है आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। आज हम सूचना के एक महासागर में जी रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी भी जानकारी को आंख बंद करके मानने से पहले सवाल पूछो। इसका स्रोत क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका संदर्भ क्या है।
ये एक बहुत जरूरी जीवन कौशल है, ये तो है। और दूसरा, मुझे लगता है ये बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। जब हम देखते हैं कि एक ही ग्रंथ की इतनी परतें और इतनी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, तो हम ये दावा करना छोड़ देते हैं कि सिर्फ हमारा नजरिया ही सही है।
और ये विनम्रता हमें उन लोगों के साथ बेहतर संवाद करने में मदद करती है जो हमसे अलग सोचते हैं। हम उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसे तुरंत खारिज करने की नहीं।
और आखिर में, जैसा हमने नवियों के बारे में बात करते हुए कहा, यह सामाजिक न्याय के लिए एक प्रेरणा देता है। यह समझना कि कमजोरों की देखभाल करना एक केंद्रीय धार्मिक सिद्धांत है, हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि ओल्ड टेस्टामेंट को एक इंसानी दस्तावेज के रूप में देखना उसे कमजोर नहीं बनाता।
नहीं,
जिसमें एक समुदाय की हजारों साल की यात्रा, उसकी उम्मीदें, उसके डर, उसकी आस्था का विकास, ये सब झलकता है, बल्कि ये उसे और ज्यादा गहरा, जटिल, भरोसेमंद और दिलचस्प बना देता है।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात शायद ये रही कि इन ग्रंथों का गंभीर और अकादमिक अध्ययन आस्था को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा परिपक्व और मजबूत बना सकता है।
अच्छा,
यह सिखाता है कि सवाल पूछना, संदेह करना और संदर्भ को समझना अविश्वास की ओर नहीं, बल्कि एक ज्यादा सूचित और गहरे विश्वास की ओर ले जा सकता है। ये आस्था को अंधविश्वास बनने से रोकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकरता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।